Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ठीक नहीं है, उसको भी छोड़ा, फिर चौथा गांव चले गए। वहां एक लड़का मिला, बोले थोड़े बहुत सुबह शाम दाल रोटी खाने लायक का था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, थोड़ा बहुत गोरा भी था, ठीक था। बोले ये तो सब कुछ ठीक है, हमारी लड़की के बराबर है, क्यों अपने लड़के के लिए इसको ओके कर दे? लड़के के बाप ने पूछा, किससे? लड़के की मां से पूछा, फाइनल कर दे? लड़की की मां ने कहा, सब कुछ तो ठीक है, इसमें एक कमी है। अब क्या कमी है भाई? बोले जब हंसता है तो इसके दांत बाहर निकल आते हैं, और तो सब ठीक था, हैं? गोरा भी ठीक है, हमारी लड़की के बराबर है, पढ़ा लिखा भी है, हमारे लड़की के बराबर है, खाने पीने के लिए भी ठीक है, दो टाइम वो गुजारा लायक खा लेते हैं, दाल रोटी के बराबर, पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, सब कुछ ठीक था। एक ही कमी है इसमें, जब ये हंसता है तो दांत बाहर आ जाते हैं। लड़की के बाप ने कहा कि तब तो कोई समस्या नहीं, इतना ही ना है? बोले हां यही है, और सब ठीक है। बोले तब कोई समस्या नहीं, शादी पक्की, हमारी बेटी के साथ इसके शादी पक्की। बोले क्यों? बोले तुम्हारी बेटी के साथ शादी होने के बाद जीवन में इसको हंसने का मौका नहीं मिलेगा। शादी होने के बाद हंसने को मौका नहीं मिलेगा, और जब हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा तो दांत बाहर आएंगे ही नहीं, तो कोई समस्या? चलो जीवन में आप हंसे नहीं हंसे, आज तो हंसे कम से कम, हैं? उसने कहा कि जैसे तेरे से शादी करने को मेरे जीवन में कभी हंसने का मौका नहीं मिला, उसी तरह तुम्हारी बेटी से उसका शादी होगा, इस लड़के का, तुम्हारी बेटी इस लड़के को हंसने का मौका ही नहीं देगी, तब तो दांत बाहर आने का कोई समस्या ही नहीं है, तो शादी पक्की। जीवन तो इस तरह निकलता है भैया। तो मार्कंडेय ऋषि खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो बचपन है, खाने पीने और खेलने का समय है, खेल रहे, शादी के बाद तो फिर खाना पीना खेलना हंसना सब बंद। नारद जी ने कहा कि अरे शादी की तू बात करता है, अब तेरी आयु केवल एक मुहूर्त की बची हुई है, मैं देख रहा हूं तेरे भाग्य की रेखाओं को, एक मुहूर्त के बाद तेरी आयु है ही नहीं, अब कहां शादी होगी और कहां तो संसार बसाएगा, हाँ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि क्यों, मेरी आयु बस एक ही मुहूर्त है? बोले हां, अब कोई तब क्या करें? बचने का और कोई उपाय है? नारद जी ने कहा कि दुनिया में बचने का उपाय नहीं है। अरे तब तो एक मुहूर्त के बाद मुझे मरना ही पड़ेगा। बोले हां पक्की बात, मरना पड़ेगा, बचने का कोई उपाय हो तो बोलो। तो नारद जी ने कहा कि एक उपाय है, वह है भगवान शिव के शरण में जा। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी शिव भक्त विद्वान हुए, उन्होंने पशुपति अष्टक करके एक 8 श्लोकों का स्तोत्र लिखा है पशुपति के बारे में। काठमांडू में है ना पशुपति मंदिर, दर्शन करने जाने की इच्छा है, आओ वहां अपना आश्रम है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है रहने खाने की, हम घुमा देंगे, दर्शन करा देंगे, वहां आना तुम्हारा काम है, रहने खाने की सारी व्यवस्था आश्रम करेगा। पशुपतिनाथ, उसमें एक श्लोक लिखा है, न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरि बलम कुलम अवति को पिन कालगतम वसम बजतरे मनुजा गिरिजा पतिम। हे मनुष्य, काल वसम गतम, जिस समय यमराज के वश में तुम पहुंच जाते हो उस समय यमराज से बचाने वाला तुम्हारा कोई नहीं होगा। न जनको न जननी न च सोदरो, बाप तुम्हारी रक्षा जब तक यमराज नहीं आए तब तक तो वो खाने पीने पहनने की व्यवस्था करके करेगा, लेकिन जिस समय यमराज तुम्हारे सामने खड़ा होगा उस समय तुम्हारे पिता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं बचा सकता है। हाँ, न जननी, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी मां भी जिस समय यमराज सामने खड़ा होगा तुम्हारे लेने के लिए, तुम्हारी मां भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती है। न जनको जननी न च सोदरो सह उदर, एक ही पेट से पैदा हुआ हुआ भाई, सह उदर तुम्हारा भाई, सहोदर भाई भी, और बाह्य जो शत्रु हैं उनसे रक्षा कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन जब यमराज सामने खड़ा होगा तो उस समय तुम्हारा भाई भी तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकता। न तनयो, तुम्हारे खुद अपने पैदा किए हुआ बेटा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। न च भूरि बलम कुलम, खूब काजू किशमिश बादाम केसर दूध खा खा के दंडवत पेल पेल के शरीर में ताकत बनाओ चाहे जितना भी। दारा सिंह भी गया, गया कि नहीं, गया कि नहीं दारा सिंह, क्या शरीर बनाया था उसने, क्या ताकत थी। भूरि बलम कुलम, अपने शरीर में चाहे जितना भी ताकत बना लो तुम, लेकिन जिस समय यमराज तुम्हारे सामने खड़ा होता है तुम्हारे अपने शरीर की ताकत भी उस यमराज से तुमको बचाने में समर्थ नहीं है, फिर कौन बचाएगा। आवति को पिनकालगतम वसम, काल के वश में हो जाने के बाद उसके वश से छुटाना किसी की सामर्थ्यता में नहीं है, तब तो फिर मरना निश्चित है। बोले नहीं, एक व्यक्ति है वह तुम्हें बचा सकता है। कौन है भाई? गिरिजापति, भजतरे मनुजा गिरिजापतिम। यदि जीवात्मा सबके आशा छोड़कर, सबका भरोसा छोड़कर एकमात्र पार्वती पति, भवानी पति, गिरिजापति भगवान शिव के अनन्य शरण में जाता है, तब यमराज से भी छुटा सकते हैं, बचा सकते हैं, वही बचा सकते हैं और नहीं बचा सकते। नारद जी ने जब ये बात कह दी, दो एक मुहूर्त में तुम्हारी आयु समाप्त है, यमराज आएगा और ले जाएगा, तुम्हारा खेल खत्म। बोले मुझे अभी जाना ही नहीं है। बोले तुम्हारे कहने से छोड़ेगा यमराज? यदि तुम्हें जाना नहीं है और रहने की इच्छा है तो यमराज से पकड़कर रक्षा करने वाला बचाने वाला दुनिया में एक ही है, वह है गिरिजापति, उसके शरण में जाओ, तब तो बच सकते हो, नहीं तो खत्म है तुम्हारी आयु। इतना तो नारद जी ने कह दिया और चल पड़े। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि आसपास में कहीं शिव के शरण में जाने लायक कहीं कहीं है, तो देखा एक मंदिर था और वहीं शिव मंदिर था। खेलना तुरंत बंद कर दिया मार्कंडेय ऋषि ने। नारद जी ने कहा है तो सही कहा होगा, छोड़ दिया खेलना। गए मंदिर के अंदर, गए आसन लगाकर अनन्य भाव से शिव के शरण में चले गए। तब तक तो यमराज आ गया, मुहूर्त तो समाप्त हो गया, प्रारब्ध तो समाप्त हो गया, आ गया यमराज। हे मार्कंडेय, तेरा समय समाप्त तो हो गया है, अब चलो हमारे साथ। बोले हम नहीं जाएंगे, हमको अभी और यहां रहना है, और खेलना है, बहुत काम करना है, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे से। बोले आज तक मेरे अनुशासन का किसी ने उल्लंघन करने का हिम्मत नहीं किया बेटा, और तुम्हारे कहने से हम छोड़ेंगे तुमको? हा, मंदिर के अंदर भी हमने नहीं छोड़ा है, घर के अंदर भी नहीं छोड़ा है, बाहर भी नहीं छोड़ा है, कहीं भी नहीं छोड़ा है। हम आवे और हमारे अनुशासन को उल्लंघन करे आज तक संभव नहीं हुआ है, चलो। बोले अभी तो हम भगवान शिव की पूजा करने बैठे हैं। बोले पूजा करने से यदि बच जाए तो सारी दुनिया बहाना बनाती रहेगी, हमारा अनुशासन ही खत्म हो जाएगा। हाँ, इस बहाने से हम छोड़ने वाले नहीं भैया। तो जब यमराज ने अपने पास और अंकुश का प्रयोग करने की तैयारी किया, मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को अंकमाल किया, पकड़ लिया। महाराज हे शिवा, ये देखो ना, ये जबरदस्ती कर रहा है, हम जाना नहीं चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, पूजा जप ध्यान करना चाहते हैं, और आपके आश्रय में हम रह रहे हैं, और आपके ही आगे आपके देखते देखते वो जबरदस्ती करे। और हमको तो नारद जी ने कहा था कि तुम ही रक्षा करोगे, इसलिए हमने खेलना बंद कर दिया और तुम्हारे शरण में आए थे। इसके बावजूद तुम रक्षा नहीं करोगे तो फिर कल से तुम्हारा भजन कौन करेगा? बोलो। जहां मार्कंडेय ऋषि ने ये भाव शिव जी के सामने व्यक्त की, वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए और यमराज के छाती में एक लात मारी। यमराज तो वहीं मर गया। मर गया यमराज। वाह, क्या काम बन गया, मार्कंडेय ऋषि बच गए, यमराज मर गया और मार्कंडेय ऋषि बच गए। इतने में सारे देवता आ गए और भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज ये तो गलत हुआ, महाराज यमः संयमतामहम। भगवान श्री कृष्ण आए और कहा, सारे जगत को अनुशासन में रखने वाला यही एक था, दुनिया तो आज तो इससे भी नहीं डरने वाले हैं, डरते नहीं है तो फिर तो कैसे अनुशासन में रहेगा जगत? इसी के चलते थोड़ा बहुत जगत अनुशासित हुआ हुआ है और ये भी अपने खत्म कर दिया तो डर का मृत्यु, फिर डर और भय तो खत्म हो गया, व्यक्ति इतना उद्दंड हो जाएंगे, जगत की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। महाराज इसको जीवन दान देना पड़ेगा। बोले एक ही शर्त पर मैं इसका जीवन दान दूंगा, जो मार्कंडेय ऋषि की तरह अनन्य भाव से मेरे शरण में आएगा उस पर ये जबरदस्ती न करें, उस पर ये जबरदस्ती न करें। जो मेरे शरण में ना आकर अन्य के शरण में घूमते हो तो उस भले कर ले, मेरे भक्तों पर ये अति न करे। ये शर्त मंजूर है तो इसको मैं जीवन दान देता हूं। बोले महाराज हम वचन देते हैं कि ये उद्दंडता नहीं करेगा, आप जीवन दान दे दो। तो भगवान शिव ने मृत्यु को यमराज को जीवन दान दिया और कहा खबरदार आज के बाद तुम उद्दंड होकर मेरे भक्त पर तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। उस दिन से भगवान का नाम हुआ मृत्युंजय। मृत्यु को जीता जिनने, इसलिए उसका नाम पड़ा मृत्युंजय। उस प्रसंग को शंकराचार्य जी स्मरण कर रहे हैं, महाराज ऐसा कठोर हृदय वाला यमराज और उस पर आपने लात मारी, कहां आपका चरण कितना कोमल और कहां यमराज का हृदय कठोर। आपके चरण में कितना कष्ट हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। मैं देख रहा हूं जूता नहीं पहना था आपने उस समय। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, मैं गप नहीं कर रहा हूं, यही शब्द प्रयोग किया है। जूता पहना होता तो भी कुछ आराम मिलता, जूता भी नहीं पहना था, नंगे पांव से अपने यमराज के छाती में प्रहार किया था, क्या कष्ट हुआ होगा महाराज। मुझे लगता है कि ऐसा काम करने वाले आपको एक जूते की आवश्यकता है। और वो जूता मेरे पास है, शंकराचार्य मोची है वो, हाँ मोची है, जूता वाले है ना उसके। उन्होंने कहा वो जूता मेरे पास है, मैंने बढ़िया जूता बना के रखा है आपके लिए। बक्षस्ताड़न मंतकस्य कठिन, अंतकस्य कठिन बक्ष, यमराज के जो कठोर हृदय में आपने जो लात मारी है। यमराज मर तो गया लेकिन उससे आपको कितना कष्ट हुआ है। यमराज मरने का दुख हमको नहीं, आपके चरण में जो दुख हुआ है ना उसकी हमको चिंता है। दूसरी बार हमने देखा है अपस्मार सम्मर्दनम, एक राक्षस हुआ है उसका नाम है अपस्मार। दक्षिणामूर्ति भगवान शिव ने, उन्होंने अपने पांव के नीचे उसको दबा रखा है आज भी, हाँ छोड़ा नहीं है। और अपस्मार भी बड़ा कठोर राक्षस था, उनको दबा रखा है उन्होंने, वो भी पांव से ही दबाया है। महाराज नंगे पांव से दबाया है, ये अपस्मार इतना कठोर राक्षस और नंगे पांव से उसको आप दबा रहे हो, इसीलिए एक जूते की आवश्यकता तो है आपको। हम देख रहे हैं कि एक जूते की आवश्यकता है। तीसरी बात, जिस समय रावण ने कैलाश को उठाया और रावण ने ये सोचा कि ये दिन दिन रोज रोज लंका से आओ, कैलाश आओ, पूजा करो, फिर लंका जाओ, ये झंझट कौन करेगा। बलात् कैलासेपि त्वद अधि वसतौ विक्रमयत। रावण ने कहा कि मेरे ये 20 हाथ में इतनी ताकत है कि कैलाश पर्वत को मैं पूरा उखाड़कर ले जाके लंका में रख लूंगा, तो रोज ये आने जाने के झंझट से तो मुक्ति हो जाएगी ना। हम लोग भी यही करते, नजदीक के मंदिर में जाना थोड़ा समस्या होता है तो घर में मंदिर बना लेते हैं, तो घर में मंदिर बनाओ तो जब उठो तब पूजा करो, मंदिर में बाहर के मंदिर में तो पुजारी के अनुसार अनुशासन से समय में जाना पड़ेगा। घर का मंदिर हो तो जब 12 बजे उठे तो वही ब्रह्म मुहूर्त हो गया ना, अपना घर का मंदिर है, ने? चाहे 12 बजे पूजा करो चाहे 1 बजे पूजा करो, कौन बोलने वाला है? बाहर के सार्वजनिक मंदिर में तो बहुत टोक टाक करेंगे। रावण ने भी यही सोचा कि कौन झंझट करे, रोज कैलाश आओ पूजा करो जाओ, पूरा कैलाश को ही उठा के ले जाता हूं लंका में, रख लेता हूं तो आराम से अपने घर की देवता जब चाहो तो पूजा करो। बलात् कैलाशे भी तद अधिवसतौ, नित्य निरंतर निवास करने वाले उस कैलाश पर्वत को ही विक्रमयति, रावण ने उखाड़ने की कोशिश की और उखाड़ ही लिया था, उड़ाया, तब तक तो पर्वत हिलने लगा। ये क्या बात है, ये कभी भी ना हिलने वाला पर्वत, महाप्रलय में भी ना हिलने वाला पर्वत, भूचाल में भी ना हिलने वाला पर्वत, एक आज अचानक क्यों हिल रहा है? भगवान शिव ने ध्यान करके देखा तो रावण ने तो उखाड़ चुका था, उठा चुका था। भगवान शिव ने अपने पांव निकाली आसन में से और उस पर्वत के चोटी पर जोर से दबा दिया। पुष्पदंताचार्य जी ने तो जोर भी नहीं कहा है, आलसप प्यंगुष्ठ धीरे से रख दिया है उस पर्वत के चोटी में अंगूठा, उतनी से रावण ऐसा दब गया, जिस पर्वत को उठाने के बाद जो गड्ढा हुआ था उसी गड्ढे में रावण पड़ गया और ऊपर पर्वत आ गया, ले दब गया रावण। नारद जी घूमते हुए गए, देखा रावण तो दबा हुआ है पर्वत से, ऐ रावण ये क्या हुआ, ये पर्वत के नीचे तू कैसे आ गया? रावण ने कहा कि महाराज ये अपनी मूर्खता से आ गया। बोले कैसे, तू तो बड़ा विद्वान था, ये मूर्खता कैसे कर ली? बोले हमने ऐसे ऐसा विचार किया था पर्वत को ले जाऊं लंका में, उखाड़ तो लिया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ मैं इसी गड्ढे में पड़ गया, इस पर्वत अब मेरे ऊपर पड़ गया है, अब यहां से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, कोई उपाय है तो बताइए महाराज। साधनोति परकार्यम इति साधु, आप तो साधु है, दूसरे के उपकार करते चलते रहते हो, इस संकट से बचने का कोई उपाय आपको मालूम है तो बता दो महाराज। बोले एक उपाय है, क्या है जल्दी बताओ। बोले भगवान शिव जो है संगीत और नृत्य के बहुत प्रिय है, उनको कोई स्वर सहित संगीत गा लेता है तो उनसे नाचे बिना रहा नहीं जाता है। तुम बढ़िया श्लोकों से बढ़िया छंदों से बढ़िया स्वर से तुम गाओ, ये भगवान ने दबा रखा है पहाड़, इसलिए तू दबा हुआ है, और तू बढ़िया गाने लग जाएगा उनकी स्तुति करेगा तो वो नाचने लग जाएंगे, वो इस बात को भूल जाएंगे कि रावण को दबाने के लिए पर्वत को दबाया है। सच महाराज? बोले हां। तो कविता की रचना तो मैं कर सकता हूं, गा भी सकता हूं, बजाने के लिए मेरे पास वीणा तो है ही नहीं, आप अपना वीणा दे दिए, खबरदार हमारी वीणा किसी को छूने नहीं देते हम। बोले ठीक है छूने ना दो, आप यहीं बैठकर वीणा बजाओ मैं गाऊंगा। बोले हमको फुर्सत नहीं है, हमें उसकी फुर्सत नहीं है, फिर हम कैसे गा तो लेंगे तो बजाना भी पड़ेगा ना। बोले एक काम कर, तेरे 10 सिर है ना, 10 में से एक निकाल ले गर्दन से बाहर, और 20 हाथ है, एक हाथ निकाल ले और ये सिर में हाथ जोड़ दे तो बीणा हो गया कि नहीं। बीणा कैसा होता है? नीचे बड़ा गोला होता है और जो उंगलियां हैं वो बीणा के बटन है ऊपर, और तुम नस निकाल ले हाथ में से, जो बड़े बड़े नस हैं वो तार बना ले, बस फेरी बाकी 19 हाथ तो रहेंगे ना तेरे, 9 मुख भी रहेंगे 19 हाथ भी रहेंगे, उन 9 मुखों से बढ़िया कविता बना के गाओ, 20 हाथों से बढ़िया वीणा बजाओ, 2 हाथों से ताली बजाओ और 17 हाथों से वीणा बजाओ, वाह क्या कहना। और जरा गाओ तो सही भगवान शिव की स्तुति, फिर देख कमाल क्या होता है। रावण ने कहा सच? बोले सच। नारद जी ने कहा बिल्कुल पक्की बात है, हम तो जा रहे हैं, अब तो करना हो तो कर। नारद जी चले गए, उपाय बता दिया, रावण ने वही किया। हाँ, एक सिर निकाल ली, एक बाजू निकाल लिया जोड़ लिया, और नसें निकाल ली और वीणा बना ली, और वीणा बजाना शुरू किया, ताली बजाना शुरू किया। जटा टवी गल जल प्रबल पालक, जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्जरी, बिलोल बीचि वल्लरी विराजमान मूर्ध्वनि, धगद 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षण मम। आहा, इस तरह उसने बढ़िया सुंदर श्लोकों को गाता रहा और बजाता रहा। भगवान शिव के कान में जब ये संगीत पड़ी तो नटराज तो थे ही, उनसे रहा नहीं गया, उतर गए आसन से, नाचना शुरू कर दिया। जैसे शिव जी ने उसको दबाने का संकल्प छोड़ा और नाचने लग गए, पहाड़ तो हल्का हो गया। रावण के लिए वो पहाड़ क्या था? वो तो शिव के संकल्प से भारी हुआ था, नहीं तो रावण के लिए वो पहाड़ कुछ भी नहीं था। जब उनका संकल्प गया और नाचने लग गए तो भूल गए कि मैंने रावण के लिए पर्वत को दबा रखा है। नाचने लगे, नाचते नाचते रावण बाहर निकल आ गया, हाथ जोड़कर गाना बंद कर दिया। शिव जी ने देखा कि ये किसने गाया था, किसने बजाया था, सामने रावण खड़ा है। महाराज मैंने ही गाया था, मैंने ही बजाया था, और ये पहाड़ किसने वो उखाड़ा था? बोले वो भी मैंने किया।